इकाई का सार, तीन शब्द, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। जोड़ दिया, अभी तोड़ते हैं कुछ। किसको तोड़ना है? कर्म बंधन को, कर्म और बंधन दो शब्दों की संधि से बना शब्द है, कर्म और बंधन। कर्म बंधन क्यों बन रहे हैं? कौन से कर्म है जो बंधन बन जाते हैं? ऐसे कौन से कर्म है जो बंधन का रूप धारण करते हैं? कौन से कर्म है? देह भान में रहकर जो भी कर्म किए जाते हैं वो बंधन बनते हैं। और राइट, क्या क्या संबंधों के रूप में अगर कर्म करते हैं तो संबंध मान करके यदि कर्म करते हैं तो वो बंधन बन सकते हैं। और स्वार्थवादी जो कर्म है वो सभी बंधन बनते हैं, सभी सकाम कर्म जो है वो बंधन बनते हैं। और विकारों के वशीभूत जो भी कर्म किए जाते हैं वो सभी बंधन है। और मोह के कारण, विकार में मोह आ गया तो मोह से जो भी कर्म किए जाते हैं वो सभी बंधन बनते हैं। और कौन से कर्म है जो बंधन का रूप धारण करते हैं? देहभान बोल दिया, सबसे पहला वही था। और अभिमान के कारण, नाम मान शान के कारण, मैं जहां है, अहंकार जहां है, उस अहंकार से प्रेरित जो भी कर्म है वो सभी बंधन बनते हैं। और पुराने हिसाब किताब और स्वार्थ बोल दिया, विषयों में अनुराग अगर है और उसके वश जो कर्म होते हैं, आसक्ति वश, विषयों के विराग वश, मोह वश, विकारो वश, देहभान वश, देह अभिमान वश, देह अहंकार वश, जो भी कर्म है वो क्या बनते हैं? बंधन बनते हैं। और स्थूल प्राप्तियां, सकाम कर्म, सकाम कर्म अर्थात कोई इच्छा उन कर्मों के पीछे है, कोई लौकिक इच्छा है, स्थूल प्राप्तियों की इच्छा है, लौकिक उपलब्धियों की इच्छा है, वो सभी कर्म बंधन बनते हैं। और परमात्मा को भूल कर जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन बनते हैं। और क्या श्रीमत के विपरीत जो भी कर्म किए जाते हैं वो सभी बंधन बनते हैं। और वो हो गया ना, नाम मान शान अभिमान मैं अहंकार वश जो भी कर्म होते हैं वो सभी बंधन बनते हैं। और आत्मा की विस्मृति के कारण जो भी कर्म होते हैं बंधन बनते हैं। और वो हो गया, और ममता वश, मोह वश, विकार वश, और कम वो भी बंधन बनेगा कल की मुरली के वरदान से। हाँ, उसके अंदर हर कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को सोच कर करेंगे तो कर्म में सफलता मिलेगी। और संकल्पों में सिद्धि कब मिलेगी? कल के वरदान में, जब संकल्प कम होंगे, विस्तार नहीं होगा, रचना का विस्तार, रचना का विस्तार यदि है अधिक यदि है तो संकल्प शक्तिहीन होते हैं, संकल्पों की सिद्धि और कर्म में सफलता। तो जो कर्म आदि अंत मध्य और अंत का विचार न किए न करके किए जाते हैं वो सभी बंधन बनते हैं। त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर नहीं करते हैं तो बंधन बनते हैं, सोच समझ कर नहीं किए जाते हैं तो बंधन बनते हैं, और कर्म और बंधन दो शब्द है। जरूर कर्मों में कुछ खोट है इसके लिए वो बंधन बन रहे हैं। तो सारे ही उत्तर सही है, उसमें से मुख्य तीन, एक तो स्व की स्मृति अगर नहीं है, अर्थात समान रहित कर्म जो है, जब समान की स्मृति नहीं है, स्व के मान की स्मृति नहीं है, स्व की स्मृति नहीं है, स्वधर्म की स्मृति नहीं है, स्व स्वभाव की स्मृति नहीं है, स्वयं को भूल कर जो भी कर्म किए जाते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर नहीं किए जाते, रूह अभिमानी स्थिति में स्थित होकर नहीं किए जाते, वो सारे ही कर्म बंधन बनते। हम ये नहीं कह रहे विकर्म, हम कह रहे बंधन, बंधन बनते। एक तो स्व की विस्मृति, दूसरा श्रीमत के विपरीत, श्रीमत के खिलाफ जो भी कर्म किए जाएंगे वो सभी कर्म बंधन बनेंगे। यदि कोई कहे चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, कोई होटल में खाना खा के आते हैं, आपका बहुत ही स्नेही है, तो आप कहेंगे इसका दिल हमें दुखाना नहीं है, अगर हम मना करते हैं तो इसका दिल टूट जाता है, तो क्या करेंगे? युक्ति से समझाएंगे हम, पर अगर वो बहुत जबरदस्ती करे और आप अगर नहीं गए और उसका दिल टूटता हो तो जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। चलो ये भी युक्ति अच्छी है। श्रीमद के विरुद्ध अगर किसी को सुख देने का हमने संकल्प किया तो वो केवल बंधन नहीं परंतु विकर्म बनेगा। चाहे वो काम विकार हो, सबसे बड़ा तो वो है, या फिर दैवी परिवार की मर्यादाएं हैं, ऐसे सारे ही कर्म जो हम किसी को सुखी बनाने के लिए कर रहे हैं। कोई कहता है कि सिनेमा चलो बहुत अच्छी मूवी लगी है, और अगर हम उसके साथ नहीं जाते, वो हमारा बहुत पुराना दोस्त है अज्ञान काल का और अभी मिल रहा है, हम तो ज्ञान में आगे, वो नहीं आया है, वो वही है जो 10 साल पहले था, और वो मिल रहे हमको मिलने आ जाए, और हमारी बहुत गहरी दोस्ती है उससे, कोई मित्र, कोई संबंधी, कोई दूर का रिश्तेदार जो हमें बहुत प्रिय था और उसको हम प्रिय थे, अब हम बदल गए पर वो तो वही है, और वो कहे कि चलो क्योंकि तब तुम जाते थे, तो ऐसा होगा कि हम उसे दुख दे रहे हैं। यहां पर जो सत्य है वो वैसे ही बता देना, स्पष्ट कर देना कि अब हम वो नहीं रहे, अब हमारा जीवन बदल गया है, अब हम वो कर्म नहीं कर सकते जब तुम्हारे साथ पहले थे तब कर रहे थे। नहीं तो एक झूठ को बचाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे और उसके साथ जाना पड़ेगा, और फिर आत्मग्लानी और अपराध भाव, ये सब कुछ होगा। इसके लिए सत्यता, जो सत्य है वो कह देना, बोल देना, बता देना, सत्य हमेशा रक्षा करेगा। जितना छुपाओगे, जितना झूठ बोलेंगे और ही झूठ की वृद्धि होगी, और एक दिन तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि झूठ का जो है चिरस्थाई अस्तित्व नहीं है, असत्य का केवल सत्य ही चिरस्थाई और सत्य की ही चिर विजय होती है, असत्य की नहीं। एक दिन झूठ बाहर आएगा। इसके लिए ऐसे सारे जो प्रसंग है जहां पर श्रीमत के विरुद्ध जाना है, किसी को खुश करने के लिए, कोई नाराज ना हो इसके लिए, वहां पर सत्य का आधार ले लेना चाहिए, नहीं तो झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारे कर्म जो श्रीमत के विरुद्ध है वो सभी क्या है, बंधन। बंधन का वो कारण बन सकते हैं, पहला स्व की विस्मृति, दूसरा श्रीमत, तीसरा बाप की याद रहित कर्म। जिन कर्मों में हम भगवान को भूल गए वो सारे ही कर्म बंधन बन सकते हैं, स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रीमत, ये तीन चीजें हैं। अगर ये है तो कर्म श्रेष्ठ होंगे, महान होंगे, अगर ये नहीं है तो बंधन होंगे, कर्म निकृष्ट होंगे, विकर्म बन सकते हैं वो। और एक बात सभी ब्राह्मणों के लिए, अज्ञान काल में एक का एक गुना और ज्ञान में एक का सौ गुना, इसको मत भूलना। अज्ञान में गलती की थी, एक का एक गुना, ज्ञान में आने के बाद जो गलती होती है उसका एक का सौ गुना, और ज्ञान में आने के बाद जो पुण्य होता है उसका भी एक का सौ गुना। ये ऑटोमेटिक मशीनरी है। बाबा ने कभी अव्यक्त महावाक्य उच्चारण किए हैं, तुम ब्राह्मणों को 63 जन्म के विकर्मों को विनाश करने को उतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए विकर्मों को विनाश करने को लगता है। हो सकता है वो 63 जन्म के विकर्म तो विनाश हो गए, तब तो हम अज्ञानी थे, तब देहभान में थे, तब भगवान आया नहीं था, तब हमें उसका कोई ज्ञान नहीं था। अब भगवान आया है, अब हमें उसका ज्ञान है, अब हमने सब कुछ समझा है। इतना सब कुछ समझने के बाद भी यदि विकर्म हो रहा है, यदि श्रीमत के बरखिलाफ कर्म हो रहा है, तो उसकी सजा बहुत है। कौन सी सजा है? धर्मराज की सजा। कौन सी है ये सजा? कहीं धर्मराज खड़ा है डंडा लेके हाथ में, कहीं दूर यात्रा के अंतिम द्वार पर धर्मराज खड़ा है, ऐसा है? सजा क्या है? कौन सी सजा मिलेगी? अव्यक्त महावाक्य है, बाबा के स्थिति का गिर जाना ही सजा है, स्थिति का गिर जाना ही सजा है, जीवन में खुशी गायब हो जाना ही सजा है, अमृत वेला न उठना ही सजा है, मुरली में रस समाप्त हो जाना ही सजा है, यज्ञ से प्रेम कम हो जाना ही सजा है, अतीन्द्रिय सुख से वंचित हो जाना ही सजा है, सेवा करने की इच्छा न हो जाना ही सजा है, यही सजा है। उदासी आ जाना, निरस्ता आ जाना, अवसाद डिप्रेशन की अवस्था आ जाना, पुरुषार्थ में मन न लगना, कुछ भी करने की इच्छा न होना, ऐसे लगना बस सो जाओ, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, हंसी नहीं जीवन में, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, ऐसी अवस्था का आ जाना अर्थात सजा, यही सजा है। कुछ अच्छा नहीं लगना या फिर संसार अच्छा लगना, संसार के गीत और संसार का संगीत और संसार के लोग और संसार की सारी सारे क्रियाकलाप संसार के मनोरंजन, मनोरंजन के साधन उसी में मन लग जाना, ये भी सजा है। इस संगम युग पर जब भगवान आया है और इतना बड़ा ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं है ज्ञान में, मुरली सुनना आना बंद कर देना, ये ही सजा है। मन में द्वेष ईर्ष्या सजा है, मन में काम विकार का उत्पन्न हो जाना यही सजा है। तो जो कर्म स्व की स्मृति में किए जाते हैं, जो कर्म आत्माभिमानी स्थिति में, रूह अभिमानी स्थिति में, स्वमान में स्थित होकर किए जाते हैं, जो कर्म बाप की याद में किए जाते हैं, उसको समर्पण भाव से किए जाते हैं उसके प्रति, जो कर्म श्रीमत अनुसार किए जाते हैं, वो सभी श्रेष्ठ कर्म है, महान कर्म है, महान बनाने वाले कर्म है, और इसके विपरीत जो भी है वो सभी बंधन है। कर्म और बंधन। तो अभी क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है, ताकि बंधन कम कम होते जाए। एक बंधन है मन का, एक बंधन है बोल का, एक बंधन है कर्म का, विचार का, संकल्पों के भी बंधन है, बोल के भी बंधन है और कर्मों के भी बंधन है। जो मन में हमने धारणाएं बिठा रखी है उनके भी बंधन है। मन की कुछ आदतें हैं, मन के कुछ संस्कार हैं, उनके भी बंधन है। ये सब बंधन के प्रकार है। बंधन क्यों होते हैं? अब दूसरा प्रश्न है, बंधन किस किस के? संकल्पों के, भाव के, भावनाओं के, संस्कारों के, आदतों के, बोल के और कर्म के, इन चीजों के बंधन हो सकते हैं। बंधन क्यों है उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं, क्योंकि कर्म के साथ इच्छाएं है, विकर्म विकार है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, ये सारों की वजह से कर्म बंधन बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपनी कर्म फिलॉसफी में चार आर्य सत्य कहे हैं। पहला सत्य है उनका, पहले हम उनके सत्य बताएंगे, फिर हमारे ज्ञान में और उस ज्ञान में क्या अंतर है वो। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जीवन दुख है, पहला सत्य, पहला आर्य सत्य कहा जाता है इसे। दूसरा सत्य दुख का कारण है। तीसरा सत्य इस कारण से मुक्त होने की संभावना है। और चौथा सत्य दुख से छूटने की विधि है, अष्टांग मार्ग या बीच का पथ, मध्यम मार्ग। ऐसी चार चीजें उन्होंने बताई है, पर बाबा ने जो कर्म फिलॉसफी बताई है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। उन्होंने कहा जीवन दुख है, क्योंकि महात्मा बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं से ये संबोधन कर रहे थे जो कि सारे सन्यासी थे और वैरागी थे, और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये बात कही जा रही थी कि संसार जो है संपूर्ण दुखमयी है। वहां पर भगवान अभी आए नहीं है, वास्तव में संसार तो दुख है ही, यहां पर रत्ती भर भी सुख नहीं है, संबंधों में दुख है, हर बात में यहां दुख ही दुख है, जो भी कर्म करो वो विकर्म ही बनता है, ऐसा ये संसार है। परंतु ब्राह्मणों का जीवन अलग है, यहां हम ये नहीं कह सकते कि जीवन दुख है, दुख था परंतु अब दिवाली हो गई नहीं, दिवाली है संडे की मुरली, हमारे लिए दिवाली है और सदा है, क्योंकि भगवान आया है तो अब यह जीवन दुख नहीं रहा है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। और इससे भी बढ़कर जो दुखी है उनको सुखी बनाने का संकल्प है, जो नरक बन चुका है, जो नारकीय जीवन है उसको स्वर्गीय जीवन बनाने का संकल्प है हमारा। तो हमारे कर्म सिद्धांत में पहला प्रिंसिपल ये नहीं है कि संसार दुख है, उससे तो हम बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि हमें भगवान मिला है, इसकी खुशी इतनी ज्यादा है कि वो अब दुख नहीं रहा। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने कहा था कि दुख का कारण है, और क्या कारण बताया था, इच्छाएं। ये सत्य है कि इच्छाएं, सकाम कर्म, उपलब्धि और संसार की प्राप्तियां यही दुख का कारण है। पर अभी ब्राह्मणों की जो इच्छाएं हैं वो इस तरह की इच्छाएं नहीं है। हमारी इच्छाएं श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, महान इच्छाएं हैं। इसके लिए हमारी इच्छाएं हमारे दुख का कारण नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाएं महान हो गई है। वो तो सकाम इच्छाओं की बात कर रहे हैं, हमारी अब इच्छा है विश्व कल्याण की, सारे संसार के कल्याण की। हमने जो पाया है वो सबको अनुभव कराने की, हमारे पास जो ज्ञान है वो सभी को देने की, ज्यादा से ज्यादा सेंटर पर सेवा कैसे हो इसकी इच्छा है हमें, ज्यादा से ज्यादा हमारा जीवन सफल कैसे हो इसकी इच्छा है हमें, हम संपूर्णता को कैसे पाए, कैसे उस परम लक्ष्य को उपलब्ध हो, ये इच्छा है अब हमारी। इसके लिए ये इच्छा हमारे दुख का कारण नहीं, वरन ये इच्छा हमारे पुरुषार्थ को श्रेष्ठ करा रही है। वो जो इच्छा की बात कर रहे हैं वो वास्तव में दुख का कारण है, क्योंकि वो इच्छा भटकाने वाली है संसार में, परंतु ब्राह्मणों की इच्छा वो नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा था कि दुख से छूटने की संभावना है, ये तीसरा आर्य सत्य है। हम कहते हैं दुख से हम छूट चुके हैं, केवल संभावना नहीं, यह सत्य हो चुका है, साकार हो चुका है। यदि हमारे जीवन में अब भी दुख है जबकि भगवान मिल गया, तो यहां चेकिंग की आवश्यकता है। क्यों? जरूर जो तीन बातें बताई, उन तीन चीजों के अभाव में कोई कर्म हो रहा है। स्व की स्मृति, बाप की याद और श्रीमत, इनको भूलकर इसके लिए दुख है, इसके लिए दुख को यहां मिटाना है। चौथा प्रिंसिपल, चौथा आर्य सत्य जो था, उन्होंने कहा इन सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग है उनके आठ, सच बोलना, सच देखना, सम्यक दृष्टि, सम्यक वृत्ति, सम्यक कर्म, सम्यक बोल, इस तरह के जो भी उन्होंने दिखाए हैं वो लगभग हमारे भी वैसे ही है। परंतु केवल सम्यक नहीं है, केवल राइट नहीं है, हमारे उससे भी आगे है श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ संस्कार, सब कुछ श्रेष्ठ, सब कुछ महान। तो कर्म सिद्धांत जो बौद्ध धर्म में है और हमारे पास जो है, इसमें लगभग बहुत सारा अंतर है। मूलभूत अंतर ये है, पहले तो हमारे लिए ये जीवन दुखी नहीं है, ये जीवन सुख का एक स्रोत बन गया है। हमारी इच्छाएं श्रेष्ठ हो गई है, इच्छाओं से, दुखों से मुक्ति नहीं, हम तो अभी दुखों से दूसरों को मुक्त कराने वाले हैं। मास्टर सुख करता और दुख हरता है, और जो अष्टांग मार्ग उधर है हमारा, तो एट फोल्ड पाथ उधर हमारा, तो उससे भी कई आगे है। इसके लिए कोई भी कर्म बंधन न बने, कोई भी बोल ऐसा न बोले कि जो बंधन बन जाए, कोई भी संस्कार अपने अंदर ऐसा ना हो जो बंधन बन जाए, कोई भी सोच और समझ ऐसी ना हो जो बंधन बन जाए। दिखाया है एक जगह, एक बूढ़ा व्यक्ति गांव के बाहर बैठा रहता है और एक युवक आता है वहां पर और पूछता है कि गांव कहां है, तो वो कहता है अंदर। फिर वो व्यक्ति पूछता है इस गांव के लोग कैसे हैं, तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है पहले ये बताओ तुम जिस गांव से आए हो वहां के लोग कैसे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है वो गांव उसके पास नाम मत लो उस गांव का, ऐसे दुष्ट लोग हैं वहां पे, ऐसे षड्यंत्र करते हैं, ऐसे पापी लोग हैं, उन्हीं से तो परेशान होकर मैं ये गांव में आ रहा हूं छोड़कर। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है फिर तो बिल्कुल मत जाना अंदर, क्योंकि अंदर के जो लोग हैं वो उससे भी पापी हैं और उससे भी दुष्ट हैं और बड़े से बड़ा षड्यंत्र करने वाले हैं, तुम सीधा आगे जाओ, ये गांव नॉट फॉर यू, तुम्हारे लिए गांव नहीं है। कुछ समय के बाद एक दूसरा व्यक्ति बैलगाड़ी पर वहां आता है और वो कहता है गांव कहां है, तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है अंदर। वो व्यक्ति पूछता है कि इस गांव के लोग कैसे हैं, बूढ़ा व्यक्ति वो व्यक्ति जो राही होता है वो पूछता है बूढ़े से, तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है तुम पहले ये बताओ जहां से तुम आए हो वहां के लोग कैसे हैं। वो कहता है वहां के लोग उनकी बात मत पूछो, वो तो स्वयं साक्षात देवता है, इतने प्रेम पूर्ण है, इतने प्यार करने वाले हैं कि बात मत पूछो, इतने मददगार है, कदम कदम पर साथ देने वाले, कदम कदम पर सहयोग करने वाले, मदद करने वाले लोग हैं, उनकी कितनी महिमा करूं। वो तो क्योंकि मुझे उद्योग चाहिए था इसके लिए मैं वहां से छोड़ के आया हूं, अब तो बताओ इस गांव के लोग कैसे हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता होगा, इस गांव के लोग तो उस गांव से भी अधिक प्यार करने वाले हैं, इस गांव से के लोग तो इतने प्रेममयी हैं, इतनी मदद करने वाले, इतने सहयोगी हैं कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा ऐसे ये लोग हैं। वो व्यक्ति चला जाता है। दूर बैठा एक व्यक्ति उस बूढ़े के पास आता है और उसको पूछता है कि आपने एक ही गांव के बारे में दो लोगों को अलग अलग बातें क्यों कही, तो आप बताओ क्यों कही। उसकी सोच ही ऐसी थी, जो हमारे अंदर है वही हम बाहर देखते हैं, हमारी पहले ही हमने एक माइंडसेट, मनोदशा, एक सेट ऑफ कंडीशनिंग करके रखा है और वही हमें दिखाई देता है। जैसे हम अंदर से हैं वैसा ही संसार दिखाई देता है, जैसे हमारी दृष्टि वैसे ही ये सारी ही सृष्टि हमको नजर आती है, सब कुछ इधर है। अगर हमारे ही मन में इस तरह के सूक्ष्म बंधन जिन्हें हमें पकड़ के रखी है हमने, कुछ कुछ धारणाएं, हमने ये सोच के रखा है कि सारे ही पुरुष ऐसे हैं, सारी ही स्त्रियां ऐसी है, हमने सोच के रखा है इनका स्वभाव ही ऐसा है, फिर उसके बाद वो कितने ही अच्छे कर्म करे हमें, हम उनकी कभी तारीफ नहीं कर सकते। हमने पहले से ही सोच के रखा है कि ये जो व्यक्ति है ये हमेशा नाम मान छान के पीछे भागता है, अब कभी उसने कोई श्रेष्ठ सेवा कर दी, कर्म कर दिया, तो भी हम सोचेंगे कि जरूर कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि पहले ही हमारा माइंड कंडीशन्ड, पहले ही हमारी वो अवधारणा है उस व्यक्ति के प्रति। इसके लिए स्वयं को हमेशा फ्रेश रखना है, इसके लिए बाबा जो कह रहे हैं सभी को अपने अनादि आदि संस्कारों में देखो, उनके वर्तमान संस्कारों को, वर्तमान आदतों को। हो सकता है 10 साल पहले आप ये सोचते हो ये व्यक्ति ऐसा है, कपट करने वाला है, छल करने वाला है, षड्यंत्र करने वाला है, परंतु 10 साल में उसने अपने आप को कब का परिवर्तन कर दिया है। हरेक अपने आप को कर रहा है परिवर्तन, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, हरेक पुरुषार्थ कर रहा है, वो तो हरेक का अपना समय होता है तब परिवर्तन की क्रांति होती है, परंतु हमने तो ये पहले से ही मान लिया है ये ऐसा है, या हमने किसी से सुन के रखा है कि ये ऐसी है, और उसी दृष्टि से उनको देखना, उसी दृष्टि से, उसी माइंडसेट के साथ उनके संपर्क में आना, पहले तो इसको बदलना, ये भी एक बंधन है। हम कर कर्मों के बंधन की बात कर रहे हैं। ये था कुछ दूसरों के प्रति हमारे मन में जो धारणाएं हैं उसके बंधन, इन सूक्ष्म बंधन, प्रिजुडिस बायस, इंग्लिश में इसको प्रिजुडिस्ड माइंड और बायस कहते हैं, स्लैंट, पहले से ही झुका हुआ है, पहले से हमने माना ये ऐसा है, ये ऐसी है, इसका ये स्वभाव है, इसका वो स्वभाव है, होगा होगा, परंतु व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, और वो पहले था, अभी फिर वो दोबारा कहकर कि ये तो हमेशा ही झूठ बोलता है, ये तो हमेशा ही ऐसा करता है, हमेशा ही लेट आता है, हमेशा ही कहता है ये सेवा मैं करूंगा और बाद में करता नहीं है, इसकी तो ये आदत ही है। Who are you to judge him? Judge not and he shall not be judged. बाइबल में लिखा है तुम जज नहीं करो तो तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा। तुम कौन और निर्णय देने वाले, तुमको किसने जज बनाया है उसका, वो जो है वो है, वो जाने बाप जाने, हमें क्या करना है। हम अपने मुंह से ऐसे कोई शब्द ना निकाले कि ये आत्मा तो है ही ऐसी। सोचो कोई एक व्यक्ति है जो नियमित अपने समय पर रोज ड्यूटी पर आता है, कितने सालों से, एक दिन वो 10 मिनट लेट हो गया और उसका इंचार्ज उसे कहते हैं ये तो हमेशा ही लेट आता है, या अपना ही उदाहरण ले लो, हम हर रोज टाइम पर जाते हैं एक जगह और एक दिन हमको लेट हो गया और कोई कह दे ये हमेशा ही ऐसा करता है, हमेशा ही लेट आता है, इसका तो ये रोज का है, तो हमको कैसे लगेगा? हमारे बारे में कमेंट हम नहीं सुनना चाहते और दूसरों के बारे में हम सुनते हैं। हम सोचते हैं हम जो दूसरों के बारे में कह रहे हैं वो उसको पता नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जो हम दूसरों के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं एक ना एक दिन उस तक वो पहुंचेगा ही। कल हमको वो भूल भुलैया में लेके गए थे तो वो वहां का गाइड बता रहा था, वो जो कहावत है दीवारों को भी कान होते वो यहीं से निकली है, यहां से हल्के से बोलो तो उधर तक आती है आवाज, तो दीवारों को भी कान होती। हम किसी के बारे में कमेंट्स करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की ग्लानी करते हैं, कब? जब वो वहां नहीं है आसपास। किसी के बारे में हम कहते हैं ये तो ऐसे ही है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, हमेशा ही झूठ बोलता है, बहुत बार देख लिया, एकदम फिक्स्ड ओपिनियन है किसी के बारे में, इतने फिक्स्ड ओपिनियन है कि हमने पहले से ही जज करके रखा है। अब वो क्या, उसको कोई काम दिया ना, हम पहले से कहेंगे इससे तो ये नहीं होगा, पहले से ही मान लिया है हमने, क्योंकि हमारी ओपिनियन फिक्स्ड है। इस ये जो फिक्स्ड ओपिनियन है, प्रिजुडिस्ड माइंड है, पक्षपाती मन, उससे स्वयं को मुक्त करना ये भी एक बंधन है। और हमेशा एक बात याद रखना, जिसकी भी हम ग्लानी कर रहे हैं वो बात उस तक कोई ना कोई जरूर पहुंचाएगा। एक उदाहरण है ऑफिस का, रियल लाइफ का उदाहरण। एक व्यक्ति ऑफिस में नया नया आया, उसके साथ और 4 लोग आए। वो थोड़ा अच्छी इंग्लिश बोलता था और उसका जो मैनेजर था उसको इतनी नहीं आती थी, गलतियां करता था, लिखने में भी गलतियां करता था। तो ये जो नया ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति है, एम्प्लॉई, वो हमेशा उस अपने बॉस पर कमेंट करता था, मना उसके एब्सेंस में, वो जब बॉस वहां नहीं है तब हमेशा कहता था ये भी कोई लेटर है, यह ऐसा भी कोई टाइप करता है, इसमें यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको वहां स्पेलिंग मिस्टेक है, और वो जाके थोड़ा बता भी दे देता कभी अंदर कि ये इसको ठीक करना है, परंतु बाहर आकर उसकी बहुत जोरदार ग्लानी करता था अपने बाकी मित्रों के सामने। उसको लगता था ये बात उस अपने बॉस को नहीं पता चल रही है, क्योंकि उसके सामने कभी नहीं करता था, कोई अपने बॉस के सामने कभी ग्लानी नहीं करता है, पीछे ही सब करते हैं। पर 1 साल के बाद वो जो 4 लोग थे उन सबको प्रमोशन लेटर मिला, इसको नहीं मिला, जबकि ये सबसे अच्छा काम करता था, इसकी भाषा भी अच्छी थी, तो उसे गुस्सा आया कि मुझे क्यों नहीं मिला, बाकी को कैसे मिला। तो अपने मैनेजर के पास जाता है और कहता है ये कैसा अन्याय है, मैंने भी काम किया, उन्होंने भी किया, उनको प्रमोशन मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तो मैनेजर कहता है क्या करूं, मुझे ना इंग्लिश अच्छे से लिखना नहीं आता है, तो मैं कैसे तुम्हें प्रमोशन लेटर दूं। जिसकी भी हम ग्लानी करते हैं, जिसकी भी हम निंदा करते हैं, उसके एब्सेंस में जो कमेंट उसके ऊपर करते हैं, और कभी कभी तो बहुत भयंकर कमेंट्स करते हैं, किसी की पवित्रता को कलंकित करने का प्रयास करते हैं बिना किसी प्रूफ के, ये सारी ही बातें उस तक पहुंचेगी ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस तक नहीं पहुंचेगी, कोई ना कोई पहुंचाएगा। जिसको आप समझ रहे हो कि मैं जिसे बता रहा हूं वो कभी नहीं ले जाएगा, एक दिन वही दगा करेगा और वहां तक वो बात पहुंचाएगा, चाहे कोई भी हो, कितना ही विश्वस्त व्यक्ति हो। तो अपने मन में फिक्स्ड ओपिनियन, फिक्स्ड धारणा, ये भी एक बंधन है। एक और बंधन है बोल का, ब्राह्मण आत्माओं के बोल कैसे होने चाहिए। पचास पॉइंट्स बताऊं, ब्राह्मण आत्माओं के बोल कैसे होने चाहिए, कौन से बोल ना हो, कौन से बोल ऐसे हैं जो बंधन बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्म बंधन को तोड़ने की, बोल भी एक कर्म है और वो भी बंधन बन सकता है। तो ब्राह्मण आत्माओं के, श्रेष्ठ आत्माओं के, ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं के बोल कैसे होने चाहिए। जो भी उत्तर बताओगे, दूसरे जो उत्तर बता रहे वो भी सुनो, ताकि बार बार वही वही रिपीट ना करो। जो दूसरे सुनते हैं ये भी एक छोटा सूक्ष्म अभ्यास है, हम अपना बताना चाहते हैं, दूसरे का नहीं सुनना चाहते। दूसरों ने बोल दिया है तीन बार, फिर भी हम वही पॉइंट बताएंगे, क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम ही बताएं। ये केवल यहां की बात नहीं कर रहे, कार्य व्यवहार में भी, जीवन में भी, हर जगह। पहले जो दूसरा बोल रहा है वो पूरा सुन लो, ताकि हम फिर से वो ना बोले। तो चालू करो, 50 पॉइंट्स निकालनी है हमारे बोल। पहले रुको, बहने कोई नहीं बोलेगी, भाइयों की तरफ से केवल। हाँ, मधुर होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। और अगर कोई लिख रहा है तो लिखते जाओ, 50 होगा तो बताना। मधुर होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। नेक्स्ट, कम होने चाहिए। देखो ये कुमार ने कितनी अच्छी बात बताई, कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए। हाँ हाँ, स्लो, धीरे धीरे होने चाहिए, धीरे। उधर सत्य होने चाहिए, युक्ति युक्त होने चाहिए, केवल भाई माताएं कोई नहीं बताएगा। श्रेष्ठ होने चाहिए, साथ साथ ये भी बताते जाओ कैसे नहीं होने चाहिए, साथ साथ। हाँ, सार्थक बोल होने चाहिए, समर्थ बोल होने चाहिए। हाँ, कटु वचन नहीं होने चाहिए। और किसी का उमंग, बहुत पावरफुल पॉइंट है, बोल कैसे होने चाहिए, किसी आत्मा का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बोल होने चाहिए। कितनी पावरफुल पॉइंट है, देखो। हम ऐसा कुछ बोल दें और किसी का उमंग उत्साह इतना बढ़ जाए कि जो दुख में थी उससे बाहर निकला है, वो डिप्रेशन से बाहर निकला है, जो इतनी गोलियां खानी पड़ती है और उससे भी होता नहीं है, ऐसा बोल बोल दिया और वो उठ खड़ा हो जाए। और कैसे होने चाहिए, 50, अभी तो 10 भी नहीं हुए, 10 हुए। और हाँ, प्रेरणा, चलो अलग अलग शब्द है पर फिर भी हम इसको लेंगे, प्रेरणादायी बोल, किसी को प्रेरणा देने वाले, मार्ग बताने वाले, राह दिखाने वाले, मार्गदर्शक बोल होने चाहिए हमारे। और हाँ, कैसे, सार गर्भित, बहुत सुंदर, बोल हमारे सार गर्भित होने चाहिए, बहुतायात उसका बाहुल्य उसमें बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, बोइस्टरस कम और सार गर्भित, कम बोल जैसे बाबा के बोल है। अभी सोचो ये शब्द बोलते हुए हमारे बोल वैसे ही होने चाहिए, बाप समान बोल, ये तो फाइनल है, इसको लिखो नहीं पॉइंट करके, ये सारे ही उसके अंतर्गत आएंगे। तो हमारे बोल सार गर्भित हो, टू द पॉइंट हो और व्यर्थ ना हो, कल्याणकारी बोल हो, रहम दिल रहम हो बोल में, रहम रहम से परिपूर्ण बोल हो और अहंकार रहित, किसने कहा अहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए बोल में, और शुभ बोल होने चाहिए, शुभम करोति वाचालम, शुभ बोल होने चाहिए थे, और माताएं नहीं, और संयमित बोल, ऐसे पावरफुल पॉइंट बताओ, संयमित बोल होने चाहिए, वरदानी बोल, बहुत ऊंचे बोल है ये, वरदानी बोल होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, लक्ष्य तक पहुंचाने वाले बोल, और समान युक्त बोल, ये सब पावरफुल पॉइंट्स में आते हैं, समान युक्त बोल, संयमित बोल, सार गर्भित बोल, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बोल, और करुणा और दया से परिपूर्ण बोल, रहम बोला है, और पुरुषार्थ क्या कहा, शीतल करने वाले बोल, बोलने वाले को शांत करने वाले बोल, जैसे रामायण में दिखाया है ना, वो जब परशुराम आता है तो लक्ष्मण और परशुराम का कैसा वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, वो इधर से कुछ बोलता है, वो उधर से कुछ बोलता है, और फिर दिखाया है श्री राम बीच में बोलते हैं, जल सम वचन बोले रघुनाथा, जल सम शीतल करने वाले बोल, तो शीतल हो जाए, सामने वाला क्रोध में आ जाए और बोल सुनकर ही शांत हो जाए। मम्मा का भी उदाहरण है यहां पर, और याद वाले, प्रभु की याद दिलाने वाले, हम बोले और लोग बाबा को याद करने लगे, कितनी अच्छी बात है ये, हमने बोला और वो यादों में खो गए बाबा की, और कृतज्ञता के बोल हो, किसी को भी आभार प्रकट करे, धन्यवाद दे, थैंक्स करे, अहोभाव व्यक्त करे, ऐसे बोल होने चाहिए कि उसने थोड़ा भी हमारे लिए किया परंतु हम इतना कृतज्ञता से परिपूर्ण हैं तो कितना वो हमको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, और प्रशंसा, वही कृतज्ञता कहो या प्रशंसा कह सकते हैं, गुणानुवाद करने वाले बोल, स्तुति करने वाले बोल, लालच रहित बोल, इधर देह भान के वश न हो, गुण देह भान के बोल ना हो, और इधर नहीं इधर, ये आवाज क्या है, अच्छा शक्तिशाली बोल, खड़े रहो, ये देखो कितना पावरफुल कुमार है, शक्तिशाली बोल है, किसी ने नहीं बोला ये, हमारे बोल कैसे हो, शक्तिशाली बोल होने चाहिए, बैठो, सादगी से भरे हुए, सिंपल, ऐसा बोले इतने कॉम्प्लिकेटेड कि दूसरे वाले को समझ में ना आए, ऐसे बोलना हो कैसे हो, सादगी से भरे हुए, तोल के बोलो, हमारे बोल कैसे हो, तोल के बोले हुए, गिने हुए नपे तुले हुए बोल हो, युक्ति युक्त और तोल के, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, तो सोच समझ के बोलो और तोल के बोलो, कोई कोई सेंटर्स में हमने सुना मुरली के एंड में ऐसा कहते हैं, तोल के बोलो, तो बोल हमारे गिने हुए, एवरी वर्ड शुड बी काउंटेड, ऐसे बोलो, ऐसे ही नहीं बहुत सारा बोल दिया, एक एक शब्द ऐसा हो कि रिकॉर्ड करने जैसा बोल हो और सरल हो, एकदम सरल, उसमें कोई छल कपट ना हो, डबल क्या कहते हैं उसे, दोहरे मापदंड वाले बोल ना हो, डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मापदंड वाले ऐसे टाइप के बोल ना हो हमारे, और हाँ मृदुभाषी, दुभाषी वो ऐसे ना हो, और हाँ भावपूर्ण, राइट। तो ये ऐसे बोल होने चाहिए। अभी माताओं की तरफ से वो पॉइंट्स बताओ जो इधर नहीं बताए गए, वही वही रिपीट नहीं करना। हाँ स्वार्थ रहित, सत्य बोल, और किसी को सुख पहुंचे, दुख ना पहुंचे, ऐसे हो, दुख देने वाले बोल ना हो। बाबा हमेशा मुरली कहते, मुरली में कहते हैं ऐसे बोलना बोलो कि कोई दुखी हो जाए, और याद युक्त बोल, बोल दिया इधर, और निरंकारी बोल, वैसे बोला है पर फिर भी ठीक है, निरंकारी बोल में मैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने याऊं किया, मैंने त्याऊं किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये जो मैं वाले बोलना हो। हाँ हमको लखनऊ में ये बहुत अच्छा लगता है, आपकी भाषा बहुत ही अदब की भाषा है, उधर मुंबई में तो एकदम नीची हिंदी है, यहां कम से कम हम कहना ये एक सुरक्षा कवच जैसा है, हम करते हैं ये सुरक्षा कवच है, तो हम कहने में अहंकार बहुत कम है और मैं कहने में अहंकार बहुत बड़ा है। वास्तव में इस संसार में मैं कहने का अधिकार केवल एक परमात्मा को है और किसी को नहीं है। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, मैं तब आता हूं जब तुम्हारे पास सुधा में मिसल सूखे चावल रह जाते हैं, जब धर्म की ग्लानी होती है तब मैं आता हूं, मैं आया हूं फिर से स्वर्ग की स्थापना करने। ये जो मैं है उसका, इसमें अहंकार नहीं है, अथॉरिटी है। मनुष्य का जो मैं है उसमें अहंकार से भरा हुआ है। वो एक बहन, हमेशा यज्ञ में ये उदाहरण दिया जाता है, काल्पनिक उदाहरण है, एक बहन जो सेंटर की इंचार्ज है, जिसने बहुत सारी सेवाएं की है, बहुत सारी देश विदेश में सेवाएं की है, हजारों लाखों सेंटर्स जिसने खोले हैं और लाखों लोगों का कोर्स कराया है, वो शरीर छोड़ती है और बाबा के पास पहुंचती है, अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में। बाप दादा उससे पूछते हैं, बाबा स्वयं पूछ रहे हैं, वो नहीं बता रही है, बाबा खुद पूछ रहे हैं कि बच्ची बताओ तुमने क्या क्या किया। उसने खुद नहीं कहा कि मैंने ये किया, बाबा ने पूछा, ये बात याद रखना, बाबा पूछ रहे हैं कि बच्ची बताओ तुमने क्या क्या किया। तो वो कहती है, बाबा मैंने ये सेंटर खोला, मैंने इतनी आत्माओं का कोर्स कराया, मैंने इतनी आत्माओं को आपसे मिलाया, मैंने देश विदेश में सेवाएं की, फिर मैंने यहां मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, बहुत सारी बातें बताई क्योंकि बाबा ने पूछा। अंत में बाबा ने कहा, बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया। तो क्या कहेंगे, बच्ची ये सब तो मैं कर रहा था, तुमने क्या किया। हमारी भी गति ऐसा ना हो जाए। ये जो मैं कहना बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस। तो मैं की जगह अगर हम कहा जाए तो बहुत ही अच्छा। और यहां सब कहते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, यहां पर यहां की जैसे स्पेशलिटी है ये। बाकी जगह जाओ तो मैं और तू, इस तरह से बात करते हैं, उसमें अहम आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो अहंकार रहित बोल हो और फटाफट बोलते जाओ पीछे। हाँ, बुलंद आवाज में बोलो, थोड़ा विकार रहित बोल और नशा शिक्षा देने वाले बोल और महान बोल। बोल दिया इधर नहीं बोला, बोला है और बोलो, बोल में अपनापन हो, वेरी पावरफुल पॉइंट, अपनेपन की फीलिंग दिलाने वाले बोल। बोल ऐसे बोलो कि दूसरों को लगे ये हमारा है, ऐसा लगे ही नहीं ये अपरिचित व्यक्ति है, ये हमारा है, ऐसे बोल। और खुशी वाले बोल, बोल दिया था इधर, बोला था, दूसरों की शक्तियों को जगाने वाले, दूसरों की पावर को जगाने वाले, दूसरों में बल भरने वाले, आत्मविश्वास भरने वाले, उमंग उत्साह, जैसे दिखाया है ना, जामवंत बोलता है और फिर कहीं हनुमान को अपनी शक्तियों की याद आती है, तो शक्तियों की स्मृति दिलाने वाले। और मूल्यवान बोल, वैल्यूएबल बोल, और हाँ प्यारे बोल। देखा ये बोला किसी ने, ये देखो इन्होंने बोला प्यारे बोल, हमारे बोल कैसे हो, प्यारे हो, मीठे। कम बोला किसी ने, कम किसी ने बोला नहीं अभी तक कि बोला, हाँ अच्छा बोल दिया। और भी बाकी है, ज्ञान युक्त बोल, योग युक्त बोल, राज युक्त बोल। और सोच समझ हो गया, नहीं इधर नहीं, इधर इधर से बहुत कम आए हैं, इधर से ज्यादा आए। हाँ हंसाने वाले बोल किसने बोला, राइट हमारे बोल कैसे हो हंसाने वाले बोल, परंतु प्रासंगिक हंसाने वाले, समय अनुसार, ऐसे नहीं कि कोई दुखद घटना हो ही और उधर हम हंसा दे लोगों, वो भी चलो दूसरी बात है, परंतु एक साधु की कहानी है, एक साधु था तो जीवन में हमेशा खुश रहा, इतना खुश रहा, इतना खुश रहा कि हमेशा नाचता रहता था, गाता रहता था, लोगों को आश्चर्य होता था, इसके इसको ऐसा मिला क्या है जो हमेशा ही हंसता रहता है। और जब उसकी मृत्यु की घड़ी नजदीक आई, तीन दिन पहले उसने अपने शिष्यों से कहा कि मैं अभी मरने वाला हूं, पर तुम लोग रोना नहीं। परंतु इतना जब से उसने कहा और शोक बढ़ गया, दूर दूर से भक्त आने लगे उसको मिलने के लिए, और ही लोगों का दुख बढ़ते गया कि यह ऐसा व्यक्ति, ऐसा नाचता गाता फरिश्ता, ऐसा नाचता गाता मसीहा इस संसार को छोड़कर जा रहा है, तो एक बार उसके दर्शन क्यों ना करे। लोग आने लगे और लोग आने लगे, पर उसने कहा था कि मैं मरूंगा तो रोना नहीं, पर लोग मानने वाले थोड़ी है। तो उसने एक शर्त रख दी पहले दिन कि मैं कल जब मरूंगा तो मुझे इसी कपड़ों के साथ जलाना। क्या शर्त रखी, इसी कपड़ों के साथ मुझे जलाना, मेरे कपड़े नहीं उतारना। तो लोग वैसा ही करते हैं, उसकी मृत्यु होती है, इतना दुख, जबकि उसने कहा था कि रोना नहीं, पर जब ऐसा कोई कहता है तो और ही रोते हैं लोग, ये लोगों का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतनी बड़ा जन समुदाय है, और उसको शमशान घाट लेके जाते हैं। जैसे उसने कहा था वैसे ही उसको उस शमशान, वो क्या कहते हैं उसको, उसकी अर्थी जो सजती है और उसको चिता पर रखा जाता है और आग लगाते हैं, मुखाग्नि देते हैं। अब सारे लोग शोकमग्न हैं, दुखी हैं, उदास हैं, चिता जल रही है। अचानक फुलझड़िया, उसने अपने शरीर में पूरे फटाके लगा रखे होते हैं, और जो फटाके बजने लगते हैं और लोगों को इतना आश्चर्य होता है, सब हंसने लगते हैं कि ये क्या, और लोग कहते हैं देखो जीवन भर तो इसने हंसाया, मरते मरते भी हंसा कर गया। तो हमारे बोल कैसे होने चाहिए, हंसाने वाले बोल, मरते मरते भी हंसा के चले जाए दुनिया को। और प्रेम युक्त बोल और धैर्य, वेरी पावरफुल पॉइंट, किसी को धैर्य देने वाले बोल। परिस्थितियां इतनी बड़ी बड़ी आती है हर एक के जीवन में, यदि हम कुछ बोल दे और उसको धैर्य प्राप्त हो जाए तो कितनी बड़ी प्राप्ति है ये, कितना बड़ा कर्म हो गया। हमने कुछ खर्च नहीं किया, केवल बोल बोल दिए। कल की मुरली मनाना अर्थात मुख में मीठे बोल हो और दूसरों की भी ये मिठाई खिलानी है। कैसे खिलानी है? बाप की याद से, बाप की स्मृति से, मुख के मीठे बोल द्वारा संबंध में लाना, अर्थात किसी को मिठाई खिलाना, ये है मनाना। और कितने हो गए? 30, 35 और बाकी है मन के। वेरी गुड, मन के बोल, झूठे झूठे नहीं, जो अंदर है वही बाहर, मन से निकले हुए, दिल से निकले हुए, दिल के उद्गार, हार्दिक उद्गार, ऐसे बोल हो। किसी को झूठी झूठी प्रशंसा करने वाले नहीं। और सम्मान देने वाले, सबसे पावरफुल पॉइंट है ये, किसी को सम्मान देने वाले बोल। बाबा ने कहा है स्वमान में स्थित रहो और सम्मान दो। ये एक टॉपिक पर चार चार पेजेस की मुरली चली है, केवल इस टॉपिक पर। सम्मान दो दूसरों को, गिव रिस्पेक्ट। हर एक क्या चाहता है जीवन में? रिस्पेक्ट चाहता है, लव चाहता है, केयर चाहता है, अटेंशन चाहता है, ये चार चीजें चाहिए सबको। और हाँ, ईमानदार बोल हो, झूठ ना हो उसमें। और सहानुभूति वाले बोल। वैसे करुणा, दया और रहम इधर बोला है, परंतु सहानुभूति वाले बोल फिर भी इंक्लूड किए जाएंगे। सहानुभूति हो बोल में, सांत्वना देने वाले बोल हो, प्रेम वाले बोल हो, किसी को लगे ये हमारा अपना है। और शांति के बोल, किसी ने बोला अभी तक? इनको देख लो, देखो ब्रह्मा कुमारी, इसको, इसने बोला एक पावरफुल, शांति वाले बोलो, अशांति फैलाने वाले बोल नहीं होना, धम चक्र बना मचाने वाले बोल ना हो, मुरलियों में आता है ये। और हाँ, प्रशंसा हो गया, पवित्र बोल, पवित्र बोल हमारे बोल में, सभी लिख लो अव्यक्त महावाक्य, तुम्हारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो, तुम्हारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो। जब तुम बोलो वो बोल सीधा दिल में चुभ जाए, वो चुभेंगे तभी जब उसमें पवित्रता होगी। नेता लोग जो है बड़े बड़े भाषण करते हैं परंतु दिल में चुभता है क्या? वो जब तक हॉल में है तभी तक उसका असर होता है, वाह वाह होती है हॉल से बाहर और खत्म, क्योंकि उसमें पवित्रता नहीं होती है। जिस बोल में पवित्रता होगी वही सीधे आर पार जाएंगे और दिल तक चुभेंगे, बाकी बोल नहीं जा सकते। बाकी तो हजारों लोग आते और बोल कर चले जाते हैं परंतु याद कहां रहता है? जब बोल के पीछे प्यूरिटी काम करती है, बाकी चीज नहीं काम करती है। और हो गया निरंकारी, हाँ, पॉजिटिव बोल, ये भी किसी ने नहीं बोला, बोला किसी ने पॉजिटिव? सकारात्मक बोल, परिस्थिति के अनुसार बोल हो, बहुत अच्छा। और निश्चल, छल कपट कुछ ना हो उसमें। और बाप की याद दिलाने वाले हो गए, इधर इन्होंने दिला दी, हाँ, आनंददायी बोल, समान बुद्धि, सहानुभूति बोल,
धारणा युक्त बोल, सहन करने वाले दूसरों को सहन करना पड़े ऐसे सुखदाई कौन से 52 हो गया, अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं। खाली अभी दो तीन पॉइंट इसके बता दो कि कैसे नहीं होने चाहिए। विकार की वायु हमारे बोल में ना हो, सबसे पावरफुल। विकारों की बदबू वाले बोल ना हो, कमेंट्स वाले बोल ना हो, टॉन्ट्स वाले बोल ना हो, नीचे गिराने वाले बोल ना हो, निरुत्साही बनाने वाले बोल ना हो, किसी को किसी की स्थिति को गिराने वाले बोल ना हो, हमने बोल दिया किसी कोई घायल करने वाले बोलना, किसी को रुलाने वाले बोलना, दुखी करने वाले बोलना हो, पीड़ित करने वाले बोलना हो, सताने वाले बोलना हो, ये सब ना हो तो ब्राह्मण आत्माओं के बोल कैसे हो? सर्वश्रेष्ठ बोल हो, महान हो। और जितने हमने अभी सुने यहां पर, सबने मिलकर स्वयं स्वयं को चेक करो कि मेरे बोल कैसे हैं, मेरे बोल कैसे हैं, ये चेकिंग करनी है। और बोल के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, बोल के पीछे भावनाएं काम करती है। सोचो एक व्यक्ति है जिसको हम बहुत नफरत करते हैं, ठीक है, अज्ञान काल में, अब हम ज्ञान में आ गए और उसको भूल गए, उसकी याद ही नहीं, और हम बहुत अच्छा, हमारा 10 साल में कभी क्रोध नहीं किया, कभी किसी से कटु वचन नहीं बोले, और अचानक वो आत्मा सामने आ जाए तो देखो अचानक हमारे मुख से वही कटु वचन उसके लिए निकल जाते हैं। क्यों? हमने तैयारी नहीं की थी, हमने सोचा नहीं था। वहां किसने काम किया? भावनाओं ने काम किया। तो बोल के पीछे क्या काम करता है? भावनाएं। ऐसी देखो कोई आत्मा है कि जिसके बारे में हमने मन में कुछ पकड़ के रखा है, सोच के रखा है, ये ऐसी है, क्योंकि वो कभी भी सामने अगर आ जाए तो कटु वचन निकल जाएंगे और वो विकर्म होगा। तो ये सारा था क्या? तोड़ना। अभी तीसरा बाकी है, वो कौन सा है? मोड़ना, स्वभाव संस्कार को मोड़ना। वो हम अगले सेशन में लेंगे ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। ट्रैफिक कंट्रोल वाले भाई चलो सभी बैठ जाएं स्थिर होकर, और जितने 50 बोल हमने सुने अपने ही मन में रिवाइज करो। बाप को याद नहीं करना है, आत्मा नहीं समझना है, क्या करना है? केवल रिवाइज करना है मन ही मन, जितना अभी सुने। कैसे रिवाइज करेंगे? मेरे बोल कैसे होने चाहिए के उत्तर के अनुसार। मेरे बोल सुखदाई होने चाहिए, प्रेरणादायी होने चाहिए, सारगर्भित होने चाहिए, हंसाने वाले होने चाहिए, उत्साह बढ़ाने वाले चाहिए, सम्मान देने वाले। ये सारी पॉइंट्स हमने जितनी बोली है इन 3 मिनट में सारी की सारी मन में रिवाइज करो। ओम शांति।
युग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो। युग में अब तुम्हें आना है।